जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद पिछले चैतन्य भागवत के रीडिंग में हमने सुना था कि किस प्रकार से सची माता बहुत अधिक दुखी थी कि उनके जो पुत्र है निमाय पंडित बहुत ही अधिक पागलपन की हरकतें कर रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और सची माता अलग अलग लोगों के पास जाकर बताती रहती थी कि इसको क्या हुआ है। तो कुछ लोग कहते थे कि ये जो पुरानी वायु का रोग इनको हुआ है या ऐसी कई प्रकार की बातें सची माता को कहती थी। तो सची माता गोविंद की शरण ग्रहण करती है और प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, मेरे जो पुत्र है स्वामी तो आप ले गए हैं और मेरे और एक पुत्र थे विश्वरूप उसको भी आप ले गए हैं और ये एक ही निमाय मुझे मेरे पास हैं तो आप इसको ठीक करो। तो सची माता जो वैष्णव थे श्रीवास पंडित वगैरह उनको भी निवेदन करती थी, लोगों को भेजती थी उनके पास। तो एक दिन श्रीवास पंडित आते हैं और आते ही निमाय पंडित को देखते हैं तो देखते ही वो समझ जाते हैं कि सब लोग कहा करते थे कि इसको वायु का रोग हो गया है, इसको तेल से मालिश करो, इसके पांव को बांध के रखो, इसको घर में बांध के रखो। तो कई प्रकार के उपाय अलग अलग लोग बताते थे लेकिन जैसे श्रीवास पंडित ने देखा तो वो समझ गए इसको वायु का रोग नहीं हुआ है। हाँ, तो ये इसको क्या हुआ है कि कृष्ण भक्ति योग के जो दिव्य लक्षण है वो निमाय पंडित प्रकट कर रहे हैं। और श्रीवास पंडित ने कहा कि इसको जो रोग है ये ऐसा रोग मुझे भी चाहिए। हाँ, निमाय पंडित का रोग क्या था, कृष्ण के लिए पागल हो गए थे। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि मुझे भी ऐसा रोग चाहिए और वो बताने लगे सची माता को कि तुम चिंता मत करो और सब लोगों के पास जाकर ये मत बताया करो कि इसको क्या हुआ है। इसको कुछ हुआ नहीं है, ये कृष्ण भक्ति के दिव्य लक्षणों को प्रकट कर रहा है आवेश में आकर। और तब सची माता को थोड़ा आनंद महसूस होता है और ये कहकर श्रीवास पंडित अपने घर वापस जाते हैं। तो उसके आगे पढ़ते हैं, एक दिन प्रभु गदाधर करे संगे अद्वैत देखिते प्रभु चले ले नरंगे। तो एक दिन गदाधर पंडित को निमाय पंडित ने अपने साथ लिया और अद्वैत आचार्य को देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े। तो हम जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो निमाय पंडित हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शब्द उनको तब मिला जब नाम जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो गदाधर पंडित का वर्णन आता है कि गदाधर पंडित दूसरे गांव में प्रकट हुए थे, पास के ही किसी गांव में, लेकिन उनके जो अंकल थे वो उनको ले आए थे यहाँ नवदीप ले आए थे। और नवदीप में आकर ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित थे उनका बहुत अधिक जो बचपन में प्रेम एक दूसरे के प्रति था। निमाय पंडित और गदाधर पंडित एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे नवदीप में जाके घर ज्यादा दूर नहीं है, बीच में श्रीवास आंगन है, योगपीठ है और इस तरफ अद्वैत भवन है और उसके पास ही श्रीवास भवन है, श्रीवास ये गदाधर का आंगन है। तो वो रेगुलर जाया करते थे उनके पास, उनसे मिलने के लिए, खेलने के लिए, स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों। और निमाय पंडित को बहुत गर्व था अपनी विद्या, गदाधर पंडित को पकड़ा करते थे। तो गदाधर पंडित और जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये कृष्ण लीला में राधा कृष्ण है, गदाई गौरांग जय। तो भक्तियों ठाकुर का प्रेम बहुत अधिक था गदाधर पंडित के लिए। तो आप गोद्रम द्वीप में जाते तो गदाधर गौर गदाधर विग्रहों की उपासना करते थे। कौन? भक्तियों ठाकुर। तो गौर गदाधर विग्रहों की उपासना ये बहुत ऊंचा स्तर है गौर गदाधर की उपासना। कहा गया कि राग भक्ति का वो अंग है, कोई नॉर्मल व्यक्ति वो उपासना नहीं कर सकता। तो गौर निताय की उपासना हमारे लिए है। गौर निताय जो हरि नाम संकीर्तन दे रहे हैं, हरि नाम के द्वारा कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, तो हमारे लिए प्रभुपाद ने गौर निताय की उपासना प्रदान की है और वो बहुत ही अद्भुत है। तो इनका बहुत ही प्रेम था। तो एक दिन लॉर्ड चैतन्य ने इनका हाथ पकड़ा कि चलो हम अद्वैत आचार्य के घर में जाते हैं। अद्वैत देख लगिया प्रभु द्विजान, बसिया करे न जल तुलसी सेवान। तो वो गए तो विश्वंभर ने देखा कि अद्वैत आचार्य बैठकर उनकी शालिग्राम शिला को तुलसी और जल दान कर रहे थे। तो ये उन्होंने व्रत लिया था एक्चुअली अद्वैत आचार्य ने। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे आदि लीला में तो वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य ने नवदीप के बहुत ही भयानक सिचुएशन को देखा कि कोई लोग किसी का कृष्ण के नाम कृष्ण की कथा कृष्ण की सेवा करने में रुचि नहीं है। हर कोई पढ़ाई करने में चंडी की उपासना करने में और बच्चों की शादियां करने में इन सब में आनंद मना रहे हैं। तो इस सिचुएशन को देखा तो अद्वैत आचार्य और उन वैष्णव ने सोचा कि इन सबका उद्धार तो केवल साक्षात कृष्ण आएंगे तभी कर सकते हैं और कोई नहीं करता, बल्कि अद्वैत आचार्य कर सकते थे लेकिन वो भगवान को लेना चाहते। तो अद्वैत आचार्य जी ने ग्रंथ पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने ये वर्णन आया तुलसी दल मात्रे न जलश चुलके नवा विक्रीते के तुलसी दल मात्रे न। कृष्ण को यदि आप तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करते हो तो कृष्ण को आप खरीद लेते हो। तो ये देखकर ही उनको लगा कि ये अद्भुत है सेवा। तो अद्वैत आचार्य ने रोज फिर ये नियम बनाया और उनके साथ हरिदास ठाकुर रहते थे फुलिया ग्राम में शांतिपुर के पास, क्योंकि बेनापोल जहाँ बुड़न ग्राम में तो उनका जन्म हुआ था ना हरिदास ठाकुर का जो बंगाल में है, फिर वो बेनापोल में आए जहाँ रामचंद्र खान और वो वेश्या का उन्होंने उद्धार किया। वेश्या का उद्धार करने के बाद हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम आए शांतिपुर के पास। तो वहाँ बलराम आचार्य ने उनके लिए कुटिया नहीं, उससे पहले बेनापोल आए जहाँ वो गोपाल चक्रवर्ती ने उनके प्रति कहा कि नाक कट जाएगी, काट डालूंगा, यदि नाम से मुक्ति मिल जाती है, नामाभास से मुक्ति मिलती है, ये गलत है तो मैं आपकी नाक काट डालूंगा। तो लेकिन उसकी नाक गल गई, उनके प्रति अपराध किया। तो हरिदास ठाकुर ने वहां से भी बेनापोल से यहाँ आए फुलिया ग्राम शांतिपुर के पास। आज भी आप जाते हैं फुलिया ग्राम तो वहाँ हाँ जो स्थान है वहाँ उनका कुटिया अद्वैत आचार्य ने बनाया था और अद्वैत आचार्य के साथ रोज भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ा करते थे हरिदास ठाकुर और हरिनाम का उच्चारण किया करते थे। तो और ये दोनों ने इतना फ्रेंडशिप था अद्वैत आचार्य का, ये दोनों ने व्रत लिया था, ये चांद करते थे हरि नाम कि कृष्ण अपीयर हो जाए और ये पूजा करते थे। तो दो विधि, एक भागवत विधि और एक पंचरात्रि की विधि चल रही थी। तो फिर जब लॉर्ड चैतन्य अपीयर हुए, आप चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में पढ़ेंगे, तो इतना आनंद हो गया, इन दोनों को पता चल गया कि सब जगह वातावरण चेंज हो गया है, लोगों की मानसिक स्थिति चेंज हो गई है। तो ये दोनों गंगा स्नान करते बहुत खुश हो जाते, सबको दान देते हैं। तो ये गए गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु, तो देखा अद्वैत आचार्य पूजा में लगे हुए हैं। द्वि भुज अस्पलिया बले हरे हरे, क्षणे हसे क्षणे कांदे आपन पासारे। तो उन्होंने अपने दोनों भुजाओं को उठाया और हरे हरे और बोल रहे थे जोर जोर से, महामत्त सिंह जन करे हुंकार, क्रोध देखी जन महारुद्र अवतार। तो वो अपने आप को भूल गए थे अद्वैत आचार्य, हंसते रहते थे रोते रहते थे और सिंह के बाकी हुंकार करते थे। तो उनको और उनके क्रोध को देखने पर ऐसा महसूस होता था कि रुद्र के अवतार हैं। अब ऐसे सदाशिव के वो इनकार्नेशन है। अद्वैत देखिबा मात्र प्रभु विश्वंबर पड़िला मूर्छित ये पृथ्वी भूपर। तो इस चीज को देखकर तो महाप्रभु इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि उनके भक्त का दर्शन किया या किसी भक्त को देखकर उनके हृदय में भावना जागृत हुई भक्ति की कि अद्वैत आचार्य को देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर पड़े जमीन के ऊपर। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल यही मोर प्राणनाथ जानी ला सकर। तो क्योंकि पहले ही सपने में इनको पता चल गया था कि ये छोटा सा जो विश्वंबर है निमाई है ये साक्षात कृष्ण है और जिनके लिए मैं उपासना कर रहा था जिनको मैं बुला रहा था कि गर्जना कर करके आप अवतरित हो तो ये वही है विश्वंबर। तो आज क्योंकि अपने आप को प्रकट किया था उन्होंने भक्ति के लक्षण तो उसके बाद वो मिले नहीं थे अद्वैत आचार्य को तो पहली बार मिल रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य पूजा करते हुए देखने मात्र से विश्वंबर गिर गए थे और जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा गदाधर के साथ विश्वरूप है विश्वंबर है तो वो गिरे हुए हैं। तो अद्वैत आचार्य ने पहचान लिया कि यही मोर प्राणनाथ मुरली वदन ये तो वो कहते यही मेरे प्राणनाथ है। अद्वैत आचार्य ने समझ लिया। कति जावे छोरा जी भावे मने मान एतदिन चुरी करी बुलाए कति जावे छोरा जी भावे मने मने एतदिन चुरी करी बुलाए खाने। तो उन्होंने कहा वो सोचने लगे अपने मन ही मन कि इतने दिन हो गए कि आप चोरी करते रहे हो और वो कहने लगे कि आज आप कहाँ जाओगे आज मेरे इससे छूटोगे नहीं। अद्वैत आचार्य ने कहा अद्वैत अठाई तोरा ना लगे चोराए चोरे रहो परे चोरी करी बेथाए। तो उन्होंने कहा अद्वैत के सामने तुम्हारी चलेगी नहीं ये चोरी। हाँ कि वो कहने लगे मैं तो चोर के ऊपर भी चोरी करने वाला हूँ मैं इतना एक्सपर्ट हूँ। अद्वैत आचार्य कहते हैं चोरी रस्तमय वे बुझी आपने सर्व पूजा सज्जल या नामी लातकने। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये चोरी करने का उपयुक्त समय है तो पूजा के लिए जो भी आरती पैराफेनलिया उन्होंने लिया था उसको शालिग्राम की पूजा से उठाया और महाप्रभु के चरणों के पास ले गए। कहते कि चोरी करूंगा अभी क्या चोरी करेंगे उनके चरण रज लेंगे उनके चरणों की पूजा करेंगे क्योंकि निमाय पंडित अभी मूर्छित हैं ये चोरी कर रहे हैं उनकी। पाद्यार्घमनीय लय से ठाए चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। तो पूजा का पाद्यार्घ अर्घ्य वगैरह सब लेकर चैतन्य गोसाई की पूजा अभी अद्वैत आचार्य कर रहे हैं। गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपरे पुनः पुनः यही श्लोक पढ़ी नमस्करे। तो गंध पुष्प दीप सब डाल के पूरा दीप के साथ षडशोपचार पूजा की जो विधि हम फॉलो करते हैं उसके अनुसार उन्होंने पूजा की और बार बार एक श्लोक बोल रहे थे। तो वो श्लोक था नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये श्लोक का उच्चारण ये कर रहे थे और ये श्लोक ओरिजिनली प्रहलाद महाराज ने कहा है ये प्रहलाद महाराज ने बोला हुआ श्लोक है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा था तो हिरण्यकश्यप के आदेश से जब दैत्य द्वारा समुद्र में पर्वतों को डाला बहुत सारे तो फिर भगवान ने उन्होंने प्रहलाद महाराज ने भगवान की ये स्तुति की थी कि नमो ब्राह्मण देवाय कि आप ब्राह्मण के प्रिय हैं या आपको ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं और गो ब्राह्मण हिताय च और गाय और ब्राह्मण के हित कर करने वाले हैं आप जगत हिताय जगत करने वाले हैं कृष्णाय हे कृष्ण गोविंदाय हे गोविंद। हाँ मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ नहीं ये विष्णु पुराण का श्लोक है। पुनः पुनः श्लोक पढ़ी पढ़ाए चरणे चिनिया पन प्रभु करे क्रंदने। तो इस प्रकार इस श्लोक को बार बार अद्वैत आचार्य दोहरा रहे थे और बार बार उनके चरणों में पढ़ रहे थे और उन्होंने पहचान लिया था कि ये निमाय पंडित ही मेरे प्रभु हैं। और अद्वैत आचार्य रोने लगे, पाकलीला द्विपद नयन जले जोड़ा हस्त करे दांडा इला पद तले। तो उन्होंने अपने आंखों के जो जल से निमाय पंडित के दोनों चरणों को धो लिया था और बारंबार हाथ जोड़कर निमाय पंडित के चरणों में प्रार्थना करते थे और उनके चरणों के पास जाकर फिर खड़े होने लगे। हाथी बले गदाधर जीवा कामड़ाई बालक रे गोसाई मत नाजुआई। तो अभी उनके साथ विश्वंबर अपने साथ गदाधर पंडित को ले गए थे। तो गदाधर अपनी जीप काटते हुए बोला, जीप कड़माड़ाई, जीप को काटते हुए मतलब ऐसे कुछ चीजें करने लगे, ये गोसाई को क्या हो गया है, सही आचरण नहीं कर रहा है, कि ये बालक की पूजा कर रहा है। क्योंकि गदाधर पंडित भी अभी जान नहीं पा रहे थे कि साक्षात कृष्ण है। हसे अद्वैत गदाधरे रवचने गदाधर बालक के जानिबा कथो दिने। तो ये देखकर अद्वैत आचार्य उस हंस गए और अद्वैत आचार्य ने कहा उनको कि ये गदाधर, अद्वैत आचार्य ने कहा कि गदाधर आज तुम हंस रहे हो और ये पूछ रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, इस बालक की पूजा कर रहे हो, एक दिन आएगा तुम्हें पता चलेगा ये बालक क्या है, साक्षात कृष्ण है। चित्ते बड़ा विस्मित हाइला गदाधर न बुझिया अवतीर्ण हाइला ईश्वर। तो फिर आश्चर्य हुआ गदाधर पंडित को, क्योंकि अद्वैत आचार्य सारे वैष्णव में अग्रगण्य थे, सबसे सीनियर थे नवद्वीप में और हर कोई उनसे जाता था कृष्ण कथा करने के लिए, उनके साथ चर्चा करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य के मन में विस्मय जागृत हुआ और अद्वैत आचार्य ने कहा कि लगता है कि ये कृष्ण ही अवतरित हुए हैं निमाय पंडित के रूप में। तत्क्षणे विश्वंबर प्रकाशिया बाह्य देखे न आवेशमय अद्वैत आचार्य। तो कुछ समय में चैतन्य महाप्रभु फिर से अपने बाह्य देश इसमें आते हैं और देखते हैं कि अद्वैत आचार्य आवेश में आकर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। अपना रे लुकाये न प्रभु विश्वंबर अद्वैत तेरा स्तुति करे जुड़ी दई दुई कर। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अपने आप को छिपाने, मैं भगवान नहीं हूँ, जैसे आप जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो सारों भट्टाचार्य और कई वैष्णव उनको कहते आप कृष्ण हो, आप कृष्ण हो, तो सबसे पहले वो अपना कान में उंगलियां डालते थे चैतन्य महाप्रभु और कई बार वो कहते थे कि आप ये पूछते थे आप कृष्ण होते, कहते आते स्तुति निंदार लक्षण, हाँ कि आप बहुत ज्यादा स्तुति कर रहे हो इसका मतलब आप निंदा कर रहे हो, जैसे हम किसी भक्त की बहुत प्रशंसा करते हैं लेकिन हमारे मन में क्या होता है, निंदा का भाव होता है। तो महाप्रभु ने शिक्षा दी कि क्या है आती स्तुति निंदार लक्षण, कोई बहुत ही स्तुति कर रहा है समझो वो आप क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने आप को ढकते हैं या छिपाना चाहते हैं और इसलिए वो हाथ जोड़ते और अद्वैत आचार्य की स्तुति करने लगे। नमस्कार करिता न पद धुलिलाय अपना देह प्रभु तारे निविदाय। तो उनको प्रणाम करते हैं, अद्वैत आचार्य के चरणों की धूलि लेते हैं और अपना जो देह है अद्वैत आचार्य को समर्पित करते हैं। अनुग्रह तुम्हें मोरे कर महाशय तुम्हारा सयामी है न जानी अनिच्छाय। तो उन्होंने कहा कि हे महाशय, हे अद्वैत आचार्य, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो क्योंकि मैं तो आपका ही हूँ, ये आप जानो। धन्य है इलावा में देखिया तुम्हारे तुम्हें कृपा करेले से कृष्ण नामक पूरे। तो उन्होंने कहा निमाय पंडित ने कि जब से मैंने आपका दर्शन किया है मैं समझता हूँ कि मेरा जो जीवन है धन्य हो गया है क्योंकि आप जैसे वैष्णव को कृष्ण नाम स्फुरित हो जाता है। तो यह है महान वैष्णव को जैसे प्रभुपाद को देखने मात्र से म्लेच्छ यवन इन लोगों के मुख में भी कृष्ण नाम निकलने लगा और आज वही लोग इतने महान वैष्णव बने हैं जो कृष्ण नाम हजार लोगों को बांट रहे हैं और जिनके हृदय में कृष्ण नाम के लिए अनुराग है, कितने सारे वैष्णव हम देखते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप जैसे वैष्णव को देखने मात्र से मेरे जिह्वा में कृष्ण नाम स्फुरित हो रहा है। जैसे हम सुनते हैं कि तीन प्रकार के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी और एक मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी कभी कभी जप करता है, कभी कभी नाम निकलता है, और मध्यम अधिकारी उसके संग करोगे तो वो हमेशा नाम करते रहता है और नाम के प्रति प्रेरित होता है, और उत्तम अधिकारी को देखने मात्र से आपके जिह्वा में नाम निकलने लगेगा। तो ये है अद्वैत आचार्य का गुण। तुम से करते पार भव बंदनाश, तुम्हार हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। तो कहते कि आप संसार बंधन का नाश करने वाले हो और आपके हृदय में कृष्ण हमेशा प्रकाशित है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो प्रभुपाद को एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद ये जो कृष्ण है भक्त के हृदय में तो परमात्मा निवास नहीं करते हैं, कृष्ण निवास करते हैं, तो प्रभुपाद जो कृष्ण है वैष्णव के हृदय में क्या परमात्मा के जैसे खड़े रहते क्या इतना लंबा? आपने देखा म्यूजियम में परमात्मा भी है, आप चित्र भी देखते खड़े हैं परमात्मा ऐसे संत चक्र गदा चतुर्भुज नारायण विग्रह है। तो कहते हैं कि कृष्ण भी खड़े रहते क्या भक्तों के हृदय में इतना लंबा समय में? प्रभुपाद के लिए वेट करो। प्रभुपाद ने आंखें बंद की और कहा वो अभी सो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भगवान अपने भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं। गोविंद विश्राम अभी तो सो रहे हैं, क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं कौन से बुक में, तो उसमें वर्णन आया था कि वैष्णव के हृदय में कृष्ण पूरे वृंदावन के साथ प्रकट होते हैं, गोवर्धन यमुना ये सब चीजों को लेकर उसके हृदय में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। और इसलिए तो भक्त माधवेंद्रपुरी के बारे में पढ़ रहा था, तो माधवेंद्रपुरी इतना आवेश था कृष्ण के लिए कि वो हर समय ऑब्जर्व रहते थे, और इसलिए वो किसी को अपने संग में नहीं लेते थे, क्योंकि सोचते थे कि कोई मेरे संग में होगा। अकेले ट्रैवल करते थे माधवेंद्रपुरी जैसे वृंदावन आए, लेकिन जब दक्षिण भारत गए तो उनके साथ ब्रह्मानंद भारती परमानंद पुरी थे उनके शिष्य, और फिर नित्यानंद प्रभु को मिले थे फॉरेस्ट में। नित्यानंद प्रभु को देख के ही इनको इतना आकर्षण हुआ माधवेंद्रपुरी को, नित्यानंद भी उनको देख के रोने लगे, और दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से कृष्ण कथा सुनते हैं। तो अकेले दोनों अकेले गए, वृंदावन दास ठाकुर कहते उस लीला का वर्णन कि नित्यानंद को छोड़ना नहीं चाह रहे थे माधवेंद्रपुरी को, लेकिन वो सेतु बंद की ओर गए मतलब कन्याकुमारी वगैरह, और ये शरयू की ओर इस तरफ आए। तो माधवेंद्रपुरी का जो हृदय है इस प्रकार से कृष्ण के लिए इतना ये था, तो ये शुद्ध भक्त के हृदय में अभ्यास करते हैं पूरे अपने वृंदावन के साथ। इसलिए तो शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, हर समय उनमें ऑब्जर्व रहता है। तो प्रभुपाद ने खुद ही इसका उदाहरण दिया कि हम पर स्पेक्ट करो, मैं अभी बताता हूँ। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य को भी वही बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके हृदय में कृष्ण सर्वदा प्रकाश। निज भक्त बाड़ाएते ठाकुर से जाने, जे न करे भक्त ते न करे न आपने। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान है अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं वैसे भगवान भी भक्तों की स्तुति करते हैं। आप देखो माधवेंद्रपुरी का जो कथा सुनाया वो किसके मुंह से निकले वो ग्लोरी? चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके आए, कल हम सुन रहे थे खेरछोरा गोपीनाथ, उन्होंने कहा मैंने मेरे गुरु से सुना है कि खेरछोरा नाम क्यों पड़ा। तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया। आप ठीक से पढ़ेंगे ना चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के उत्सव के अध्याय को जरूर पढ़िए। तो इतना गुणगान किया महाप्रभु ने, और चैतन्य चरितामृत में कितनी जगह कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का एक गुण आपको बताता हूँ। कृष्णदास कविराज कहते हैं भक्तेर गुण बाढ़े थे, भक्तों के गुणों का वर्णन करने में चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आता था, सबसे ज्यादा आनंद। और कैसे करते थे, जब वो गुणगान करते थे वो कहते कि पांच पांच मुख होते थे उनके, मतलब इतना आनंद लेते थे। अब देखो आप पढ़ेंगे तो वो हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं, आप कितने, आप एक ज्वेल के समान हो इस पृथ्वी में। हरिदास ठाकुर कहता है कि हे चैतन्य, एक कीड़ा कम हो जाए तो क्या आपको कमी होगी, मेरे जैसा जो शूद्र है, यवन है, ये पृथ्वी में मर जाए तो क्या आपको कुछ कमी होने वाली है। तो हरिदास ठाकुर ने अपने सारे भक्तों का गुणगान किया। जैसे परमानंद पुरी को कहा कि मैं तो आपका दास हूँ, क्योंकि आपने मुझे खरीद लिया है आपके कृष्ण कथा के कारण। आप कृष्ण कथा इतना स्वीट करते हो, और स्वरूप दामोदर को कहते थे कि आप कितना वंडरफुल कीर्तन करते हो, और फिर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सबको महाप्रभु ने इतना प्रशंसा किया है। और इतना ही नहीं, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और हर साल 4 महीने के लिए नवद्वीप से पूरा ग्रुप आता था, गृहस्थ भक्तों का कॉन्ग्रीगेशन आता था, बच्चों के साथ, माताओं के साथ, और प्रभु जाते थे केवल महाप्रभु को मिलने के लिए, उनका संग लेने के लिए, उनके साथ कृष्ण कथा करने के लिए। और जब जाते थे ना तो महाप्रभु सबको बुलाते थे और रो पड़ते थे कि देखो कि आप लोग इतने ये हो कि मेरे लिए आते हो, मुझे आनंद देने के लिए, आप कितना कष्ट उठाते हो जगन्नाथपुरी आने के लिए। तो महाप्रभु चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में देखो कि महाप्रभु ने हरेक का गुणगान किया है। इतना ही नहीं, अपनी माता सची माता का गुणगान किया संन्यास के बाद जब शांतिपुर गए, और उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति को अपनी माता पिता और गुरु को कैसे आदर देना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए। महाप्रभु संन्यास के बाद जब आए शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर, तो सची माता को अद्वैत आचार्य ने पालन की, मतलब पालकी भेजा था कि महाप्रभाय आया है संन्यास के बाद। सची माता को उन्होंने बोला, महाप्रभु ने कहा था कि सब लोग आ सकते नवद्वीप के, केवल एक व्यक्ति नहीं आ सकते, वो थे विष्णुप्रिया। बाप रे, जैसे विष्णुप्रिया ने सुना तो विवरण आता है कि विष्णुप्रिया आंगन में आए और एक गाय के बछड़े के समान क्रंदन करने लगी, रोने लगी, और पूरा नवद्वीप खाली हो गया था। और चैतन्य भागवत में और एक लीला आती है कि जब महाप्रभु पहली बार वृंदावन के लिए निकले तो सारे वैष्णव, सारा नवद्वीप के भक्त लोग महाप्रभु को मिलने के लिए लालायित थे। तो बोट नहीं था, कुछ ही बोट था, तो सबने जंप लगा दिया। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, कोई व्यक्ति देखेगा तो जो पानी है उसमें केवल सर ही दिखाई देते थे, और बाल, पूरा वो गंगा का वो बाल बाल दिखाई दे रहे थे। उनको कितना अनुराग था, लेकिन महाप्रभु ने कहा था कि एक को नहीं मिलूंगा मैं, वो थे विष्णुप्रिया। तो उतना उनको दुख हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों का बड़ा मुंह भर भर के गुणगान किया है, एक भी भक्त नहीं छोड़ा कि जिसका महाप्रभु ने प्रेज नहीं किया। एवं प्रभुपाद का, प्रभुपाद का गुणगान चैतन्य मंगल में महाप्रभु के मुख से निकला है, मोर सेनापति भक्त जाए वे तथा आए, वहां वहां जाएगा जहां जहां वो गए हैं, और उन सबको भक्त बना के ले आएगा। ऐसे 2 प्यार चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकले हैं प्रभुपाद के लिए। आगे चलकर उन्होंने कहा, वो भी बोला, देश देश ऐसे, देश देश विदेश ऐसे वर्ण है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये गुण है, और उनके भक्तों का भी ये गुण है, वो स्तुति करते प्रशंसा करते हैं। भक्तों की प्रशंसा करने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का गुण क्या है, निज भक्ते बाड़ाएते ठाकुर से जाने, अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। जैसे देखो अर्जुन की महिमा बढ़ाए, कैसे अर्जुन की महिमा कैसे बढ़ाई भगवान ने, सारथी भी और इसने सबको मारा, लेकिन कृष्ण ने मारा था, लेकिन सारा क्रेडिट किसको दिया, उन्होंने गीता में आप पढ़ते हैं ना कि मैं देख रहा हूँ, हे कृष्ण मैं देख रहा हूँ क्या आपके विकराल रूप में इतना बड़ा है, जिनके दांतों में सब कड़मड़ी, सारे सैनिक कौरवाज वगैरह सब मर रहे हैं, ये तो पहले उसने देख लिया था। कहते मैंने तो सब पहले मार दिया, आप जस्ट उठो, आप जस्ट फाइट करो। तो हमारे लिए भी वैसे ही एक्चुअली प्रभुपाद ने और लॉर्ड चैतन्य ने प्रीचिंग अरेंज की है, लेकिन हम लोग क्रेडिट लेते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कहते कि कोई क्रेडिट लेने वाला चाहिए महाप्रभु की सेवा के लिए, बस महाप्रभु ने सब अरेंज कर दिया है, टेम्पल बनेंगे, प्रीचिंग बनेगा, यू जस्ट गो, जब थोड़ा सा प्रचार करो, आप फिर देखो सारी चीजें हो रही हैं। देखो कितना प्रभुपाद डिसाइपल जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था और जिनके पास कोई किताबें भी नहीं थी। हाँ, जब इन लोगों को लंदन भेजा, दो जो पति पत्नी को, उस समय की उपनिषद था भगवद गीता तो पब्लिश ही नहीं हुई थी। वो कहते थे हमें तो पता ही नहीं था बाकी सब चीजें। वो दो तीन किताबों को पढ़ के हम प्रचार करते थे, लेकिन इतना फेथ था, लॉर्ड चैतन्य करेंगे, लॉर्ड चैतन्य। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्या बोला था, इस प्रकार से महाप्रभु ने किया है। लेकिन भक्तों को क्रेडिट लेने के लिए तैयार होना चाहिए। मने भले अद्वै तक कर भारी भूरे, चोरे रहो परे आगे करी अच्छी चोरी। तो फिर अद्वैत आचार्य मनी मन बोलने लगे, क्यों आप चतुराई कर रहे हो कि मैं पहले से ही तुम्हारे चरणों के मतलब चोरी कर चुका हूँ। हसिया अद्वैत के छो करे ला उत्तर, सभा है ते तुम्हें मोरा बड़ा विश्वंबर। तो अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया कि आप सबसे बड़े हो और मेरे विश्वंबर हो आप। कृष्ण कथा कौतु के था कि बे कठाई, निरंतर तुमा जन देखी बारे पाए। तो अद्वैत आचार्य ने अपनी इच्छा प्रकट की कि तुम यहाँ ही रहो, मैं आपको देखना चाहता हूँ और आपके संग में मैं कृष्ण कथा का आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। कृष्ण कथा कौतु के ठाकी वे कठाई रहो और आप कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण कथा का आनंद अनुभव करेंगे। सर्व वैष्णव इच्छा तुम्हारे देखिते, तुम्हारा सहित कृष्ण कीर्तन करिते। देखो एक वैष्णव के दूसरे साथ या एसोसिएशन के किस चीज के लिए, आपके साथ रुकना है तो कृष्ण कीर्तन करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। अद्वै तेरा वाक्य सुने परम हरिषे, स्वीकारिया चले लेना निजवासे। तो भक्त कोई ऑर्डर देता है ना भगवान को, वो मना नहीं कर पाते। तो चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं आपके संग में कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ और सारे वैष्णव भी आपको देखकर आपके संग में कृष्ण के कीर्तन करना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने अपने गर्दन हिलाई, हाँ यस यस, हाँ ठीक है, हाँ मैं करूंगा इसे। और फिर गेला नहीं जवासे, वास्ते में अपने घर चले गए। जानेला अद्वैत हैला प्रभु र प्रकाश, परीक्षित चले लेना शांति पुरवास। तो फिर अद्वैत आचार्य जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु ने या कृष्ण ने अपना प्रकाश किया है नवद्वीप में। तो फिर परीक्षा करने के लिए वो नवद्वीप के लिए चले गए। तो अद्वैत आचार्य का दो घर था, अद्वैत आचार्य के एक शांतिपुर में निवास स्थान था और एक यहाँ था। तेरा चित्त बुझे बारह शक्तिकार, जारा शक्ति चैतकार, जारा शक्ति कारण्य चैतन्य अवतार। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कौन है जो अद्वैत आचार्य के शक्ति के प्रभाव को समझ सकता है, क्योंकि अद्वैत आचार्य के समान शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि उनके केवल गर्जना से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। ये सब कथा जारा नाही का प्रतीत, सत्य अध पात तार जान हने छेद। तो अभी वो सावधान करते हैं कि जिस व्यक्ति को अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के इन लीलाओं में विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन में पतन हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से वो कृष्ण चेतना हो जाएगा। वो कहते जिस व्यक्ति को अद्वैत आचार्य महाप्रभु के इन लीलाओं में विश्वास नहीं है, महाप्रभु विश्वंबर प्रतिदिने दिने संकीर्तन करे सर्व वैष्णवेर सने। तो अभी पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णव के संग में रोज संकीर्तन शुरू किया। सबे बड़ा आनंदित देखी विश्वंबर, लिखित ना पारे के आपन ईश्वर। तो विश्वंबर को देखकर जो साक्षात कृष्ण है, सारे वैष्णव नवदीप के बहुत आनंदित हुए हैं, लेकिन कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा था कि साक्षात कृष्ण है। सर्व विलक्षण तार परम आवेश, देखिया सबार चित्ते संदेह विशेष। तो हर कोई देख रहा था निमाय पंडित के इस भावावेश को, कृष्ण का कीर्तन करने में जो भावावेश को प्रकट करते थे, और सबके चित्त में संदेह था कि ये कुछ विशेष अद्भुत है ये निमाय पंडित जो हैं। एकन प्रभु रहय आनंद आवेश के कहिबे तहा सबे पारे प्रभु शेष। तो जब चैतन्य महाप्रभु को प्रेमावेश आ जाता था तो उनके दशाओं का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो शेष शेष अनंत शेष जिनके सहस्र मुख होते हैं उनके पास भी शक्ति नहीं है कि वो चैतन्य महाप्रभु के इस कीर्तन का, उनके आवेश का वर्णन कर सकते हैं। शते का जने वो कंप धरे बारे नारे, नयने बहय शत शत नदी धारे। तो कोई कैसे, ये तो बहुत अतिशयोक्ति हो गया, हाँ कोई विश्वास नहीं करेगा आज के समय में। जैसे कृष्ण की लीलाओं में विश्वास नहीं है, क्या कोई छोटा सा बच्चा गोवर्धन को उठा सकता है? तो पहले इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने क्या कर दिया, पहले ही आगाह कर दिया, सूचना दे दी, हाँ यदि विश्वास नहीं करोगे महाप्रभु की लीलाओं को तो आपका आध्यात्मिक चेतना में विकास नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो कहते कि महाप्रभु के शरीर में इतनी कंपन होता था कि सौ सौ लोग उनको पकड़े तो भी वो रह नहीं पाता था, शांत नहीं हो पाते थे, और इतने आंसुओं की धारा निकलते थे कि सौ सौ नदियां ऐसे भय रही हैं। कनक पन सजन पुलकित अंग, क्षण क्षण अट अट हसे बहुरंग। और जब उनका अंग पुलकित हो जाता था तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, और ऐसे लगता था कि मानो वे सोने का कटहल हो, मतलब महाप्रभु का जो बाल है वो सारे गोल्डन थे, और उनका जो शरीर भी कहता था सुवर्ण वर्ण हेमांगो। ये जो श्लोक महाभारत में वर्णन किया है विष्णु सहस्र नाम में व्यास देव ने, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनका वर्ण कैसे है, सुवर्ण कलर का है। हाँ तो ये सब ऐसे भक्तों को लग रहा था कि कटहल है, इतना लंबा बड़ा कटहल, जिसमें जैसे कटहल में वो होता है ना हार्ड होता है ऊपर का उसका वो घाटेदार होता है, तो महाप्रभु के गोल्डन हेयर बाल ऐसे खड़े हो गए थे, तो कोई टच भी करेगा तो ऐसे लग रहा था कि कटहल के समान कठोर है वो। क्षणेहाय आनंदे पूर्णचित प्रहरे हय लेना बले न कृष्ण व्यतिरेक। तो किसी किसी क्षण में एक एक प्रहर के लिए चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, एक प्रहर में 3 घंटा, और जब वापस आ जाते थे नॉर्मल बाह्य दशा में तो कृष्ण के अलावा वो कोई चीज बोलते नहीं थे चैतन्य महाप्रभु। हुंकार सुनिते दुए श्रवण विदरे, तान अनुग्रह तान भक्त घन तरे। तो कहते जब वो हुंकार करते थे तो ऐसे लगता था कि कान फट रहे हैं, और लेकिन उनके कृपा के कारण उनके भक्तों के केवल कान नहीं फटते थे, बाकी उनके फटते होंगे। कहते तार अनुग्रह उनकी कृपा के कारण। सर्व अंग स्तंभाकृति क्षण क्षण हाय क्षण हाय क्षण क्षणेहाय सही अंग नव नितमाय। तो कभी कभी उनका जो अंग है इतना कठोर हो जाता था कि स्तंभ है जैसे खंभे के समान, गिरता है तो कुछ नहीं होता था, लेकिन कभी कभी बहुत अधिक सॉफ्ट हो जाता था, नवनीत मक्खन की तरह महाप्रभु का जो बॉडी है सॉफ्ट हो जाता था, जैसे कृष्ण का शरीर है बहुत कोमल। जो यशोदा माता ने देखा था पहले दिन जब जन्म लिया, यशोदा माता तो डरती थी हाथ लगाने में, क्योंकि वो ओल्ड हो गए थे, यशोदा माता और नंद महाराज बहुत ओल्ड हो गए थे तब उनको पुत्र हुआ था, वो भी वो महाद्वादशी व्रत रखते थे तब उनको पुत्र हुआ, और यशोदा माता ने जैसे देखा कि ये पहली बार जन्म लिया बालक, और वो यशोदा माता अपना चेहरा उसमें दिखाई दे रहा था कृष्ण के, इतना अद्भुत शरीर था कृष्ण जब जन्म लिए वृंदावन में, और वो जब ऐसे बैठी थी तो कृष्ण ऐसे थे तो जैसे माता ऐसे पकड़ सकते ना गोद में ले सकते, वो डर रही थी कि ये इतना सॉफ्ट है कि मेरी उंगली उनके अंदर ना चली जाए, ऐसे इतना डर था। जीवा गोस्वामी अपने ग्रंथ में वर्णन करते इस बात का। तो इस प्रकार से कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु का अंग भी इतना नवनीतमय हो गया था मक्खन की तरह। आप देखो ना मक्खन कितना सॉफ्ट होता है। अपूर्व देखिया सब भागवत गणे नर ज्ञान आर के नास्त करे मने। तो जितने भी भगवत भक्त थे इन विकारों को देखते थे तो उनको नहीं ये महसूस होता था कि सामान्य नर है, हाँ ये तो अद्भुत हाँ कोई व्यक्ति है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग में कीर्तन की शुरुआत करते हैं और अपने कई प्रकार के जो भावावेश हैं उनको प्रकट करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य भागवत के निताई गौर प्रेमानंद के श्रील वृंदावन दास ठाकुर के।